ये आकाशवाणी है। अब आप चंद्रिका जोशी से समाचार सुनिए। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने आज नई दिल्ली में यूक्रेन के विदेश मंत्री दिमित्रो कुलेबा के साथ रूस यूक्रेन संघर्ष और इसके व्यापक परिणामों पर चर्चा की। सोशल मीडिया पोस्ट में डॉ जयशंकर ने कहा कि दोनों नेताओं के बीच आपसी हित के वैश्विक और क्षेत्रीय मुद्दों पर विचार विमर्श हुआ। उन्होंने कहा कि भारत यूक्रेन के साथ द्विपक्षीय सहयोग सहित समग्र संबंधों को सुदृढ़ बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। यूक्रेन के विदेश मंत्री कल दो दिन की यात्रा पर भारत पहुंचे थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना अपने आप में एक बड़ी आवश्यकता है और सरकार सभी गांवों तक डिजिटल सुविधाएं पहुंचा रही है। बिल गेट्स के साथ बातचीत में प्रधानमंत्री ने कहा कि कृषि, स्वास्थ्य और शिक्षा में प्रौद्योगिकी अपनी बड़ी भूमिका निभा सकती है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत ने एकाधिकार को रोकने के लिए प्रौद्योगिकी का लोकतंत्रीकरण किया है, ये जनता द्वारा और जनता के लिए है। श्री मोदी ने कहा कि भारत में महिलाएं नई तकनीक अपनाने के लिए स्वतंत्र हैं। नमो ड्रोन दीदी योजना सफलतापूर्वक चल रही है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के दुरुपयोग पर चिंता व्यक्त करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि बिना उचित प्रशिक्षण के इसके दुरुपयोग होने की संभावना है। बिहार में विपक्षी महागठबंधन ने आज 40 लोकसभा क्षेत्रों के कांग्रेस, राष्ट्रीय जनता दल और वाम दलों के बीच सीटें साझा करने की घोषणा की। समझौते के अनुसार राष्ट्रीय जनता दल 26 सीटों पर चुनाव लड़ेगा, कांग्रेस को 9 और वाम दलों को 5 सीटें दी गई हैं। मध्य प्रदेश में लोकसभा के पहले चरण में 6 सीटों पर भरे गए सभी 107 नामांकन वैध पाए गए हैं। उम्मीदवार कल तक अपना नाम वापस ले सकते हैं। मध्य प्रदेश में सीधी, शहडोल, जबलपुर, मंडला, बालाघाट और छिंदवाड़ा सीटों पर 19 अप्रैल को वोट डाले जाएंगे। वोटों की गिनती 4 जून को होगी। महाराष्ट्र में कांग्रेस को रामटेक सुरक्षित सीट से अपना प्रत्याशी बदलना पड़ा है। कांग्रेस ने इस सीट से रश्मि बर्वे को मैदान में उतारा था। सामाजिक न्याय विभाग की जांच समिति से जाति प्रमाण पत्र अमान्य घोषित होने से श्रीमती बर्वे अयोग्य हो गईं। अब कांग्रेस ने उनके पति श्यामराव बर्वे को प्रत्याशी बनाया है। श्रीमती बर्वे ने बम्बई उच्च न्यायालय में इसे चुनौती दी है। मामले की सुनवाई 1 अप्रैल को होगी। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है कि श्रीमद स्वामी स्मरणानंद जी महाराज भारत की आध्यात्मिक चेतना के अग्रदूत थे। श्री मोदी ने स्वामी स्मरणानंद जी के देहावसान को व्यक्तिगत क्षति बताते हुए एक ब्लॉग में कहा कि कुछ साल पहले स्वामी आत्मस्थानंद जी का निधन और अब स्वामी स्मरणानंद जी का प्रयाण मर्माहत करने वाला है। सरकारी ई मार्केट जीईएम के माध्यम से चालू वित्त वर्ष में रिकॉर्ड 4 लाख करोड़ रुपए का सकल कारोबार हुआ है। ये पिछले वित्त वर्ष की तुलना में 2 गुना है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय ने इसराइल को गजा में भुखमरी का संकट रोकने के लिए मानवीय सहायता में व्यवधान न पहुंचाने का आदेश दिया है। न्यायालय ने यह आदेश विश्व खाद्य कार्यक्रम और अन्य संगठनों की गजा में कुछ ही हफ्ते में अकाल जैसी स्थिति उत्पन्न होने की आशंकाओं को देखते हुए किया है। अमरीका में दिवालिया कंपनी एफटीएक्स से जुड़े जालसाजी मामले में पूर्व क्रिप्टो करेंसी कारोबारी सैम बैंकमैन फ्राइड को 25 वर्ष के कारावास की सजा सुनाई गई है। फ्राइड को ग्राहकों के साथ 8 अरब डॉलर की धोखाधड़ी का दोषी पाया गया है। बेंगलुरु में इंडियन प्रीमियर लीग आईपीएल क्रिकेट में आज रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का मुकाबला कोलकाता नाइट राइडर्स से होगा। ये मैच शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। मैड्रिड स्पेन मास्टर्स बैडमिंटन टूर्नामेंट के मिक्स डबल्स में एन सिक्की रेड्डी और बी सुमित रेड्डी की जोड़ी सेमीफाइनल में पहुंच गई है। आज महिला सिंगल्स क्वार्टर फाइनल में पीवी सिंधु का सामना थाईलैंड की सुपानिदा केतेथोंग से होगा। इसके साथ ही यह समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।